एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक आत्मकथा नहीं है, बल्कि पहचान, नस्ल, विरासत, इन सब गहरी बातों को समझने की एक कोशिश है
जी।
किताब है बराक ओबामा की ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। और दिलचस्प बात यह है कि ये उन्होंने राष्ट्रपति बनने से काफी पहले लिखी थी, 1995 में।
हाँ बिल्कुल, तब वे शिकागो में एक सामुदायिक आयोजक और नागरिक अधिकार वकील के तौर पर काम कर रहे थे।
और शायद यही बात इसे इतना प्रामाणिक बनाती है ना?
बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई बाद में सोच समझकर लिखी गई राजनीतिक संस्मरण नहीं है। ये एक युवा की, मतलब अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को टटोलने की एक बहुत ही ईमानदार और कई बार उलझन भरी कहानी है। और ओबामा की कहानी तो वैसे भी असाधारण है। पिता केंजाई अश्वेत, जिन्हें वे जानते भी नहीं थे ठीक से, और माँ कंसास की श्वेत अमरीकी।
हाँ,
तो उनका पूरा जीवन ही जैसे दो अलग दुनियाओं, दो संस्कृतियों के बीच संतुलन बनाने जैसा रहा।
तो सवाल यह है कि ये कहानी जो लगभग 30 साल पुरानी है, आज क्यों महत्वपूर्ण है? आज हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं?
देखिए, मेरे ख्याल में तो ये आज शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। ये पहचान बनाने की जो बुनियादी जद्दोजहद है ना, जो हर इंसान महसूस करता है, ये किताब उसे छूती है। खासकर वो लोग जिनकी पृष्ठभूमि मिली जुली है, बहुसंस्कृतिक है। ये पूछती है कि भाई हम कौन हैं? क्या हमारी पहचान बस विरासत में मिल जाती है, या हम उसे बनाते हैं?
सही कहा, ये अपनी जड़ों को, परिवार की उलझी हुई कहानियों को समझने और फिर समुदाय में अपनी जगह तलाशने की कहानी है।
बिल्कुल।
तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं, जैसा किताब में बताया गया है। कहानी तीन हिस्सों में है। शुरुआत होती है ओरिजिन्स यानी जड़ों से, जन्म
और नाना नानी ने की, जिन्हें वे ग्राम्स और टूट कहते थे।
और पिता बराक ओबामा सीनियर?
पिता तो एक तरह से दूर के ही किरदार थे, एक मिथक जैसे। माँ उनकी कहानियां सुनाती थीं कि वो कितने प्रतिभाशाली थे, केन्याई विद्वान थे, लेकिन असल जिंदगी में वो लगभग अनुपस्थित थे।
और हवाई जैसी जगह जो इतनी मिली जुली संस्कृति वाली मानी जाती है, वहां नस्ल का मुद्दा कैसे सामने आया उनके लिए?
हाँ, हवाई विविध था, पर नस्लीय तनाव वहां भी थे। एक घटना का जिक्र आता है जिसने उन पर गहरा असर डाला। बचपन में उन्होंने लाइफ मैगजीन में तस्वीर देखी।
अच्छा।
एक अश्वेत व्यक्ति की जिसने अपनी त्वचा को केमिकल से गोरा करने की कोशिश की थी और उसमें अपना चेहरा बिगाड़ लिया था। ये तस्वीर, मतलब एक छोटे बच्चे के लिए नस्लीय आत्मघृणा की ये जो भयावह बात है, उससे उनका पहला सामना था। इसने उन्हें झकझोर दिया, सोचने पर मजबूर किया कि उनकी अपनी त्वचा का रंग, उनकी पहचान, इसका क्या मतलब है।
ये तो वाकई बहुत कम उम्र का अनुभव था। फिर वे कुछ साल इंडोनेशिया में भी रहे हैं ना?
जी हाँ, कुछ साल जकार्ता में, माँ और इंडोनेशियाई सौतेले पिता लोलो सोयोटोरो के साथ। वहां बाहरी होने का अनुभव थोड़ा अलग था, नस्ल से ज्यादा शायद राष्ट्रीयता और सामाजिक वर्ग का मामला था। लेकिन वहां उन्होंने गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता का खेल, ये सब बहुत करीब से देखा। ये हवाई की दुनिया से बिल्कुल अलग था।
और पिता से मुलाकात, सुना है सिर्फ एक बार हुई थी?
हाँ, जब वो 10 साल के थे, पिता एक महीने के लिए हवाई आए। वो उनकी एकमात्र मुलाकात थी। रोमांचक भी थी, पर थोड़ी बेचैन करने वाली भी।
कैसी थी वो मुलाकात?
पिता आकर्षक थे, बुद्धिमान, आत्मविश्वास से भरे हुए, लेकिन साथ ही काफी मांग करने वाले, आलोचनात्मक भी। उनके जाने के बाद एक खालीपन सा रह गया। फिर जब वे हवाई वापस आए अपनी किशोरावस्था में, तो ये अकेलापन और बढ़ गया। अपने स्कूल में भी गिने चुने अश्वेत छात्रों में से थे। पहचान का संकट गहराया, थोड़ा विद्रोह भी किया, नशा, पढ़ाई से मन उचटना।
हाँ, ये टीनेज का एक अम पैटर्न भी होता है कई बार।
बिल्कुल, और इसी दौर में उन्होंने मैल्कम एक्स जैसे अश्वेत लेखकों और विचारकों को पढ़ना शुरू किया। वो अपनी पहचान, अपने गुस्से को समझने के लिए एक ढांचा ढूंढ रहे थे। ये सिर्फ विरासत की बात नहीं थी, ये अमेरिका में एक अश्वेत होने के मायने समझने की कोशिश थी।
तो ये सारी पृष्ठभूमि उन्हें कहानी के दूसरे हिस्से तक ले आती है, शिकागो। लगता है यहाँ आकर पहचान की वो खोज ज्यादा सचेत हो जाती है।
बिल्कुल, कॉलेज के लिए वे अमेरिका की मुख्य भूमि आए, पहले ऑक्सीडेंटल कॉलेज, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी। यहाँ वे ज्यादा गंभीर हुए, अनुशासित, राजनीतिक रूप से भी जागरूक हुए।
किस तरह की चीजों में रुचि बढ़ी उनकी?
इतिहास, राजनीतिक सिद्धांत, वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये सत्ता की संरचनाएं कैसे काम करती हैं, नस्लवाद, असमानता की जड़ें कहाँ हैं, और यही उन्होंने एक फैसला किया।
क्या?
उन्होंने अपनी अश्वेत पहचान को सिर्फ एक जैविक तथ्य की तरह नहीं बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर सक्रिय रूप से अपनाने का फैसला किया। ये एक सचेत चुनाव था।
इसी दौरान पिता की मृत्यु की खबर भी आई थी।
हाँ, कोलंबिया में पढ़ते हुए उन्हें नैरोबी से फोन आया कि पिता की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ये एक बहुत बड़ा झटका था, जिस पिता को वे ठीक से जान भी नहीं पाए थे। उन्हें और समझने का मौका मिलने से पहले ही वो चले गए। इस घटना ने शायद उनके मन में केन्या जाने, अपनी जड़ों को और गहराई से जानने की इच्छा को और भी मजबूत कर दिया।
पिता की मृत्यु के बाद और कॉर्पोरेट जगत में कुछ समय काम करने के बाद उन्होंने सामुदायिक आयोजक बनने जैसा अलग रास्ता क्यों चुना? ये थोड़ा हटके फैसला लगता है।
हाँ, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी। कॉर्पोरेट दुनिया उन्हें शायद थोड़ी खोखली लगी। वे जमीनी स्तर पर कुछ करना चाहते थे, कुछ बदलाव लाना चाहते थे।
अच्छा।
नागरिक अधिकार आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने शिकागो के साउथ साइड इलाके में सामुदायिक आयोजक बनने का फैसला किया। ये वो लोग होते हैं जो स्थानीय निवासियों को उनकी समस्याओं के लिए एकजुट करते हैं, जैसे घर, नौकरी, पानी, बिजली।
और वो इलाका कैसा था?
वो इलाका स्टील इंडस्ट्री बंद होने से बहुत बुरी तरह प्रभावित था। गहरी गरीबी थी, निराशा थी।
तो शिकागो का अनुभव कैसा रहा? आसान तो नहीं रहा होगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ही विनम्र करने वाला अनुभव था। मतलब वे एक पढ़े लिखे बाहर से आए हुए व्यक्ति थे, आदर्शवाद था, लेकिन जमीनी हकीकत का अनुभव कम था।
लोगों ने कैसे स्वीकार किया उन्हें?
शुरू में तो शक की निगाह से देखा, उनकी नीयत पर, उनकी पृष्ठभूमि पर। लोगों को लगता था कि ये हमारी मुश्किलें क्या समझेंगे। बदलाव बहुत धीमा था, निराशाजनक भी। छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थीं। किराएदारों को इकट्ठा करना, वोटरों का रजिस्ट्रेशन करवाना, शहर से बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ना, कोई ग्लैमरस काम नहीं था ये।
तो सबसे बड़ा सबक क्या सीखा उन्होंने शिकागो में?
शायद सबसे बड़ा सबक था सुनना, ध्यान से सुनना। उन्होंने सीखा कि बदलाव ऊपर से थोपने से नहीं आता। लोगों की कहानियों को सुनना पड़ता है, उनकी चिंताओं को समझना पड़ता है, उनमें विश्वास जगाना पड़ता है कि वे खुद अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं।
ये तो बहुत महत्वपूर्ण सीख है।
बिल्कुल, ये विनम्रता और सहानुभूति का पाठ था जो उनके पूरे जीवन में काम आया।
शिकागो में चर्च के साथ उनका जुड़ाव भी काफी अहम माना जाता है, खासकर रेवरेंड जेरेमिया राइट।
हाँ, ट्रिनिटी यूनाइटेड चर्च ऑफ क्राइस्ट। वो उनके लिए सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं बनी, वो अश्वेत समुदाय के जीवन, उनके इतिहास, उनके संघर्षों का एक केंद्र बन गया।
अच्छा।
रेवरेंड राइट बहुत प्रभावशाली वक्ता थे। उनके उपदेश अश्वेत इतिहास, सामाजिक न्याय और जिसे वो आशा की दृष्टता यानी ऑडेसिटी ऑफ होप कहते थे, उस पर केंद्रित होते थे।
यानी मुश्किल हालात में भी उम्मीद बनाए रखने का साहस।
बिल्कुल, इन बातों ने ओबामा को अपनी निजी कहानी को एक बड़े सामूहिक इतिहास से जोड़ने में मदद की। चर्च ने उन्हें वो समुदाय दिया, वो जड़ें दी जिनकी वे तलाश में थे।
तो शिकागो के अनुभव ने उन्हें काफी बदला। और फिर आता है कहानी का तीसरा और आखिरी हिस्सा, केन्या। ये उनकी पहचान की खोज का जैसे भावनात्मक क्लाइमैक्स लगता है।
निश्चित रूप से। हार्वर्ड लॉ स्कूल जाने से ठीक पहले उन्होंने तय किया कि अब केन्या जाने का, अपने पिता की धरती देखने का और अपने परिवार की कहानी के जो फेलंदन हिस्से हैं उन्हें जोड़ने का वक्त आ गया है।
वहां उनकी मुलाकात किससे हुई?
नैरोबी में उनकी मुलाकात हुई अपनी सौतेली बहन ओमा से। ओमा काफी आत्मविश्वासी, मुखर महिला थी। वो उनकी गाइड बनी, लेकिन उन्होंने अफ्रीका और पिता के बारे में ओबामा के जो कुछ रोमानी ख्याल थे उनको चुनौती भी दी।
परिवार के बाकी लोगों से मिलना कैसा रहा?
ओमा उन्हें अपने बड़े लुओ परिवार से मिलाने ले गईं, उनकी दादी ग्रैनी सारा, जिन्होंने पिता के बचपन की बातें बताईं, कई सौतेले भाई बहन, चाचा चाची, जिनसे वो पहली बार मिल रहे थे।
उन्हें अपनापन महसूस हुआ?
हाँ, बहुत गर्मजोशी से स्वागत हुआ उनका। वहां उन्हें वंश, परंपरा, जड़ों की एक बहुत गहरी शक्तिशाली भावना महसूस हुई। पहली बार लगा कि वे सिर्फ माँ के परिवार का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े जटिल अफ्रीकी खानदान का भी हिस्सा हैं।
और पिता के बारे में क्या नई बातें पता चली? क्या वो मिथ की ये छवि बदली?
हाँ, यहीं आकर वो मिथक टूटा। परिवार वालों से घंटों बातें हुई, पिता की असाधारण प्रतिभा, उनकी महत्वाकांक्षा की कहानियां सुनी, लेकिन साथ ही उनके अहंकार, शराब से उनके संघर्ष, केनिया लौटने के बाद राजनीतिक व्यवस्था से उनके टकराव, आर्थिक मुश्किलें, उनकी निराशाएं, ये सब दुखद कहानियां भी सामने आईं। वो जो एक आदर्श हीरो वाली छवि थी वो गायब हो गई। उसकी जगह एक जटिल, प्रतिभाशाली लेकिन साथ ही गलतियां करने वाले एक दुखद इंसान की तस्वीर उभरी।
ये सच जानना तो काफी मुश्किल रहा होगा उनके लिए।
मुश्किल था लेकिन शायद जरूरी भी। एक तरह की आजादी मिली उन्हें एक ऐसे आदर्श के बोझ से जो शायद कभी पूरा हो ही नहीं सकता था। यात्रा का सबसे भावुक पल तब आया जब वे अलेगो गांव गए, जहां उनके पिता और दादा की कब्रें थीं। वहां खड़े होकर उन्हें गहरी शांति और सुलह का एहसास हुआ।
अच्छा,
वे उस पिता के लिए रोए जिसे वे कभी जान नहीं पाए थे और उस इतिहास के लिए जिसे अब पूरी तरह से अपना कह सकते थे। उन्हें समझ आया कि पहचान ये या वो चुनने का मामला नहीं है, अश्वेत या श्वेत, अमेरिकी या अफ्रीकी,
बल्कि
इन सभी हिस्सों को एक साथ स्वीकार करने, उन्हें एकीकृत करने का नाम है पहचान।
किताब का अंत भी काफी महत्वपूर्ण है।
हाँ, किताब खत्म होती है मिशेल रॉबिन्सन, जो बाद में मिशेल ओबामा बनी, उनसे उनकी सगाई की खबर पर। ये जैसे उनकी अकेली खोज के खत्म होने और अपना खुद का परिवार बनाने की शुरुआत का प्रतीक है।
सही है, एक ऐसी पहचान पर आधारित परिवार जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से हासिल किया था।
बिल्कुल।
तो इस पूरी यात्रा को अगर देखें तो ओबामा के मूल जीवन दर्शन, उनके मूल्यों के बारे में क्या पता चलता है? क्या चीज थी जो उन्हें चला रही थी?
कई बातें हैं। पहली तो यही कि पहचान कोई बनी बनाई चीज नहीं है जो हमें मिल जाती है। इसे सक्रिय रूप से बनाना पड़ता है, खोजना पड़ता है, अपनाना पड़ता है, अपनी सारी जटिलताओं के साथ। दूसरी बात, विरासत कितनी परतदार होती है। नस्ल सिर्फ रंग नहीं है, ये इतिहास है, कहानियां हैं, उम्मीदें हैं, सामाजिक ढांचे हैं। उनके लिए अपनी श्वेत माँ और नाना नानी की विरासत और अश्वेत केन्याई पिता की विरासत, दोनों को समझना और सम्मान देना जरूरी था।
पिता के साथ जो उनका रिश्ता था और फिर माफी की बात, वो भी अहम लगते हैं।
बहुत अहम। पिता की उस आदर्श छवि को तोड़कर उन्हें एक असल कमजोरियों वाले इंसान के रूप में देखना और अंततः माफ करना, ये उनकी अपनी भावनात्मक शांति के लिए बहुत जरूरी था। ये दिखाता है कि हम अपने पूर्वजों की गलतियों को स्वीकार कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, पर उन्हें अपनी पूरी पहचान पर हावी होने से रोक सकते हैं।
हाँ।
और फिर समुदाय का महत्व, हवाई हो, शिकागो हो या केन्या, उन्होंने सीखा कि अपनापन सिर्फ मिलता नहीं, इसे कमाना पड़ता है, साझा संघर्ष से, दूसरों को सुनने से, जुड़े रहने से।
और सुलह, रिकॉन्सिलिएशन।
हाँ, शायद सबसे जरूरी, अपने अंदर के जो विरोधाभास थे, अमेरिकी और अफ्रीकी, श्वेत और अश्वेत, पिता का आदर्श और पिता की हकीकत, इनके बीच एक तालमेल बिठाना, यही चीज उन्हें संपूर्णता की ओर ले गई। और वो आशा की धृष्टता वाली बात,
शिकागो वाली,
हाँ, वो सिर्फ एक नारा नहीं था, वो मुश्किलों और निराशा के बावजूद लगातार कोशिश करते रहने का एक नजरिया था, छोटी छोटी जीतों में उम्मीद ढूंढना।
अगर हमें उनकी जिंदगी के तीन ऐसे मोड़ चुनने हों जिन्होंने वाकई उनकी दिशा बदल दी, तो वो कौन से होंगे?
ये मुश्किल है चुनना, पर तीन घटनाएं खास तौर पर ध्यान में आती हैं। पहली तो यकीनन बचपन में वो लाइफ मैगजीन वाली तस्वीर देखना।
हाँ, वो तो बहुत मार्मिक थी।
उसने उनकी मासूमियत छीन ली और नस्ल, पहचान, आत्म छवि जैसे मुश्किल सवालों से उनका सीधा सामना करा दिया। ये उनकी खोज की शुरुआत का एक तरह से प्रतीक है।
और दूसरा मोड़?
दूसरा, शिकागो में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर बनने का फैसला। यह सिर्फ करियर बदलना नहीं था, ये अपनी अश्वेत पहचान को जीने का, जमीनी हकीकत से जुड़ने का, बदलाव लाने की कोशिश करने का एक सचेत, सोचा समझा फैसला था।
हाँ।
वहां जो सबक सीखे, सुनना, विनम्रता, राजनीति की असलियत, वो उनके भविष्य के लिए बहुत कीमती साबित हुए।
और तीसरा, सबसे अहम मोड़?
तीसरा, बिना शक, केन्या की यात्रा। वो उनकी निजी खोज का चरम बिंदु था। वहीं उन्होंने अपने पिता के भूत का सामना किया, उनकी उलझी हुई विरासत को समझा, अपने अफ्रीकी परिवार से जुड़े और आखिरकार अपनी बिखरी हुई पहचान के टुकड़ों को जोड़कर एक एकीकृत स्व को महसूस किया। वो सुलह और आत्मस्वीकृति का एक बहुत गहरा पल था जिसने उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाया।
ओबामा के इन अनुभवों से आज के दौर में हम क्या सीख सकते हैं? उनके संघर्ष, उनकी जीत, ये आम इंसान के जीवन से कैसे जुड़ती हैं?
देखिए, उनकी कहानी कई मायनों में हम सबकी कहानी है। पहली बात तो वही, पहचान और अपनेपन की तलाश, ये तो हर कोई करता है किसी न किसी शक्ल में। हम सब जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, हमारी जगह कहाँ है।
सही है।
उनकी यात्रा दिखाती है कि कैसे अपनी जटिल पारिवारिक पृष्ठभूमि को, अपनी मिलीजुली सांस्कृतिक जड़ों को अपनाया जा सकता है, यहां तक कि उनके विरोधाभासों को भी। संपूर्णता एक रूपता में नहीं बल्कि एकीकरण में है।
और जो मुश्किल पारिवारिक रिश्ते होते हैं जैसे अनुपस्थित माता पिता, उसको लेकर भी इसमें काफी कुछ है।
बिल्कुल। पिता को समझने और माफ करने की उनकी जो यात्रा है वो दिखाती है कि हम अपने पूर्वजों की छाया से बाहर आ सकते हैं, उनकी गलतियों से सीख सकते हैं, पर उन्हें अपने रास्ते का रोड़ा बनने से रोक सकते हैं। माफी अक्सर दूसरों से ज्यादा खुद के लिए जरूरी होती है। और एक बात, सेवा के जरिए मकसद ढूंढना, एक अच्छा खासा करियर छोड़कर सामुदायिक काम में जाना, ये दिखाता है कि दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश में अक्सर ज्यादा गहरा सुकून और मतलब मिलता है।
और आज के समय में जब समाज इतना बटा हुआ लगता है, ध्रुवीकरण इतना ज्यादा है, तब उनकी कहानी से क्या कोई खास सबक मिलता है?
हाँ, बहुत जरूरी सबक। अलग अलग दुनियाओं में हवाई, इंडोनेशिया, शिकागो, केन्या, वे सफलतापूर्वक रहे और काम कर पाए, इसकी वजह थी गहरी सहानुभूति और दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश। मतभेदों के बीच पुल बनाना, अलग अलग अनुभवों का सम्मान करना, ये आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है।
और वो सुनने वाला सबक?
शिकागो वाला।
हाँ,
ध्यान से, सहानुभूति से सुनना। ये निजी रिश्तों से लेकर सार्वजनिक जीवन तक हर जगह बातचीत की जुड़ने की कुंजी है। और आखिर में उनकी कहानी याद दिलाती है कि हमारे निजी संघर्ष अक्सर बड़ी ऐतिहासिक और सामाजिक ताकतों से जुड़े होते हैं। इस बड़े संदर्भ को समझना हमें अपने जीवन को और गहराई से देखने में मदद करता है।
ये वाकई एक असाधारण यात्रा का बहुत ही व्यवहारिक और भावनात्मक विश्लेषण रहा। तो इस पूरी चर्चा के अंत में सुनने वालों के लिए तीन मुख्य बातें क्या होंगी जिन्हें वे अपने साथ ले जा सकते हैं?
जी, अगर तीन मुख्य निष्कर्ष निकालने हों तो मेरे ख्याल से वे ये होंगे। पहला, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। अपने अतीत के मुश्किल, शायद दर्दनाक हिस्सों का सामना करना, जैसे किसी अनुपस्थित या कमजोरियों वाले माता पिता के साथ रिश्ता और उन्हें समझने की कोशिश करना, ये गहरी भावनात्मक शांति और मुक्ति ला सकता है। माफ करना, जैसा हमने कहा, खुद को अतीत के बोझ से आजाद करने का एक तरीका है।
दूसरा निष्कर्ष क्या होगा?
दूसरा, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो हमें विरासत में मिलती है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हम अपनी अलग अलग विरासतों, नस्लीय, सांस्कृतिक, पारिवारिक को मिलाकर और सोच समझकर चुनाव करके इसे खुद बनाते हैं। नस्ल जैसी चीजें सामाजिक तौर पर बनती हैं, लेकिन उनके असर बहुत असली और गहरे होते हैं। जरूरी यह है कि हम इन असरों को कैसे समझते हैं और अपनी कहानी खुद कैसे लिखते हैं।
और तीसरा,
एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। तीसरा, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। सच्चा अपनापन, सही मायने में बिलोंगिंग, अक्सर अपनी विरासत के सभी हिस्सों को, अच्छे और बुरे दोनों, अपनाने से आता है और दूसरों के साथ साझा संघर्ष, सहानुभूति और जुड़ाव के जरिए गहरे रिश्ते बनाने से मिलता है। हम चुन सकते हैं कि हम अपनी विरासत के कौन से हिस्से को आगे बढ़ाना चाहते हैं और किससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। यही चुनाव हमें परिभाषित करता है।
ये किताब और ये चर्चा हमें याद दिलाती है कि अपनी जड़ों को समझना, चाहे वे कितनी भी उलझी हुई क्यों ना हो, खुद को पूरी तरह से जानने और स्वीकार करने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है।
बिल्कुल, और ये दिखाती है कि कैसे हमारी निजी कहानियां अक्सर बड़े ऐतिहासिक और सामाजिक किस्सों का हिस्सा होती हैं और कैसे अपनी कहानी को समझना हमें दुनिया में अपनी जगह समझने में मदद करता है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।